संगोष्ठी के समापन सत्र में आप सभी पधारे हुए आगंतुकों का स्वागत है। समापन सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं हम मंगलाचरण से। मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्रीमती कुसुम जैन जी को। श्रीमती कुसुम जैन
पर अपना स्थान ग्रहण करें। आरसी जैन साहब, प्राचार्य नवीन प्रकाश जी, श्री सुरेश जी जैन, डॉक्टर शीतल जैन जी, डॉक्टर अशोक कुमार जैन, डॉक्टर रतन चंद जी जैन, मुझे मालूम है मंच पर बैठना कितना कठिन काम है, लेकिन फिर भी संगोष्ठी की शोभा के लिए आपको यहां विराजना उचित रहेगा।
कुसुम जैन,
श्रीमती कुसुम जैन आए मंगलाचरण के लिए।
सदा स्वयं आत्मनि सदा स्वयं आत्मली अनंत शुद्ध सिद्ध सृष्टि के ललाम हो हे अनादि महामंत्र मंगल निष्काम हो नमोकार मंत्र को प्रणाम हो प्रणाम हो महामूर्ति ज्ञानी आचार्य नमस्कार हो महामूर्ति ज्ञानी आचार्य नमस्कार हो उपाध्याय ज्ञान ज्योति जहां अंधकार हो जहां अंधकार हो विनयशील बीते रागी साधु ज्ञानवान हो हे अनादि महामंत्र मंगल निष्काम हो नमोकार मंत्र को प्रणाम हो प्रणाम हो सर्व पाप नाश हो महामंत्र ध्यान से सर्व पाप नाश हो महामंत्र ध्यान से अंतर बाहर पवित्र मंत्र नमस्कार से मंत्र नमस्कार से नमस्कार मंत्र मुग्ध सृष्टि के निधान हो हे अनादि महामंत्र मंगल निष्काम हो नमोकार मंत्र को प्रणाम हो प्रणाम हो हे अनादि महामंत्र मंगल निष्काम हो नमोकार मंत्र को प्रणाम हो प्रणाम हो प्रणाम हो प्रणाम हो प्रणाम हो
धन्यवाद श्रीमती कुसुम जैन जी। समापन सत्र को विधिवत शुभारंभ करने के लिए भगवान महावीर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने हेतु मैं निवेदन करूंगी समाज सेवी एवं रत्न व्यवसायी श्रेष्ठी श्री गोपीचंद जी सुरेंद्र कुमार जी बिलाला जी से कि वे कृपया आए और दीप प्रज्वलित कर इस सत्र का शुभारंभ करें। आपके तिलक एवं मालार्पण कर स्वागत करने हेतु मैं निवेदन करूंगी अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी के माननीय श्री एन के सिटी साहब को। हमारी इस 3 दिवसीय संगोष्ठी में भोजन व्यवस्था में हमें जिन लोगों का सहयोग रहा हम उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। श्री राजमन जी हरीशचंद्र जी साईवाड़ वाले कृपया वे मंच पर पधारें। श्रीमती विमला देवी छावड़ा मोती सन्स वाली श्रीमती रत्न देवी पाटनी राजरतन वाली। मेरा डॉक्टर श्रीमती शीला जैन से अनुरोध है कि वे कृपया इन सभी का अभिनंदन करें। सहयोग जिन महिला मंडलों ने हमें प्रदान किया वे हैं जोहरी बाजार दिगंबर जैन महिला समिति, मालवीय नगर महिला मंडल, महावीर महिला मंडल, महिला जागृति संघ, वीर महिला संघ। इसके अलावा अन्य सहयोगी संस्थाएं जिन्होंने भोजन व्यवस्था में हमें सहयोग प्रदान किया वे हैं, जयपुर के सभी जैन सोशल ग्रुप्स, राजस्थान जैन साहित्य परिषद जयपुर, जयपुर के सभी महिला मंडल। हम मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज जयपुर प्रवास व्यवस्था समिति की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। श्रुत पंचमी के अवसर पर साहित्य की बिक्री में 50% डिस्काउंट हमें जिन्होंने दिया वे हैं श्री धर्मेंद्र कुमार जी पाटनी। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि कृपया मंच पर पधारें।
मित्रों, मेरा यह सौभाग्य है कि परम पूज्य क्षमा सागर जी महाराज के इस पुनीत आयोजन में आने का सौभाग्य मिला। मैं आप सभी को इस आयोजन की बधाई देता हूं और मेरा मन एक बार और कहता है, सेठी जी जब आप महाराज को चातुर्मास प्रवास के लिए रोक लेंगे तो मैं समूचे भोपाल के साथ आके आपको बधाई दूंगा। इस भावना के साथ मैं निवेदन करता हूं महाराज से कि मैं अज्ञानी कभी बैठकर हो जाएगी मैं अज्ञानी कभी बैठकर ज्ञानी के चरणों में अपनी प्यास बुझाने आया। इस अद्भुत झरनों में ये तो पक्की बात सही है, मुझको ज्यादा ज्ञान नहीं है पर जैन धर्म से ज्यादा बढ़कर दुनिया में विज्ञान नहीं है। जैन धर्म से बढ़कर दुनिया में कोई विज्ञान नहीं है। उठो साथियों, बढ़ो, चलो अपनी पतवार संभालो, आने वाला कल अपना है ये विश्वास जमा लो। श्रद्धा और समर्पण की तुम लिख लो नई कहानी, गुरु चरणों में बनी रहे इन सांसों की राजधानी। तूफानों से टकराने का साहस पैदा करना है, सन्नाटों के घर में जाकर आहट पैदा करना है। धर्म और विज्ञान की बढ़ती रहे ये दोस्ती, धर्म और विज्ञान की बढ़ती रहे ये दोस्ती, तब बहुत मायने रखती है ये वैज्ञानिक संगोष्ठी, तब बहुत मायने रखती है वैज्ञानिक संगोष्ठी। जयपुर वाले रहे नहीं लगता है अब घाटे में, जयपुर वाले नहीं रहे मन करता है घाटे में। रोक सको को रोक लो मित्रों इनको इस चौमासे में, रोक सको तो रोक लो मित्रों इनको इस चौमासे में। अद्भुत राग बजेंगे इनके चिंतन नूपुर में, अद्भुत राग बजेंगे इनके चिंतन नूपुर में। मेरा मन ये कहता है चौमासा होगा जयपुर में, मन मेरा ये कहता है चौमासा होगा जयपुर में। इनके चरणों की रस में माथ लगाने आया हूं, ईश्वर के इन जीवित अंशों को शीश झुकाने आया।
आज के हमारे इस समापन सत्र में हमारे बीच दो प्रमुख वक्ता हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी श्री सुरेश जैन जी को। आप IAS हैं भोपाल से। श्री सुरेश जी जैन भारतीय प्रशासन सेवा में वरिष्ठ अधिकारी हैं। वे मध्य प्रदेश में संचालक लोक शिक्षण, महाप्रबंधक मध्य प्रदेश राज्य परिवहन एवं अनेक वरिष्ठ पदों पर रहे हैं। वे होशंगाबाद, विदिशा एवं बैतूल में जिला कलेक्टर रहे हैं। आप उनके एवं उनकी धर्मपत्नी विमला जैन द्वारा लिखित एनवायरमेंटल लॉज ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश टाउन डेवलपमेंट एवं विधि संबंधी अन्य अनेक पुस्तकें विधि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। श्रीमती विमला जैन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश है। मेरा माननीय श्रेष्ठी श्री गोपीचंद जी सुरेंद्र कुमार जी बिलाला जी से अनुरोध है कि वे आपका तिलक एवं माल्यार्पण कर स्वागत करें। संरक्षण में जैन सिद्धांतों की भूमिका, माननीय श्री सुरेश जी जैन। समय अभाव के कारण आपका समय 10 मिनट है।
परम पूज्य गुरुद्वय उपस्थित विद्वज्जन, माननीय सेठी जी, देवी और सज्जनों, मुझे आज इस जयपुर नगरी में आपके बीच उपस्थित होकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मुनि श्री क्षमा सागर जी के प्रखर नेतृत्व में 21वीं सदी में मानवीय चेतना ने बहुत बड़ी ऊंचाई प्राप्त की है। 21वीं सदी में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे आधुनिक व्यक्ति को अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए ऐसे संत ही सक्षम हैं। वे कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ जीने वाले मनुष्य को उसके चतुर्मुखी विकास के लिए सहज, सरल, प्रभावी और वैज्ञानिक ढंग से आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं। नई पीढ़ी उनके व्यक्तित्व के मधुर आकर्षण तथा उनकी गुणवत्तापूर्ण, शक्तिशाली एवं वैज्ञानिक प्रवचन विधि से अत्यधिक प्रभावित एवं अभिभूत हैं। पूज्य क्षमा सागर जी, पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी के शैक्षणिक अवदान, पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के आध्यात्मिक अवदान एवं पूज्य आचार्य विद्यानंद जी के सामाजिक अवदान के पावन संगम स्थल हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। पूज्य भव्य सागर जी महाराज, बुंदेली माटी की सुगंधित और अनुभवी व्यक्तित्व के धनी हैं, हम उनको भी प्रणाम करते हैं। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, इस सब के बावजूद भी हमारे देश का और विश्व का और पूरी पृथ्वी का वातावरण प्रदूषित हो रहा है और पर्यावरण संतुलन गड़बड़ा रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आधार पर पर्यावरण संरक्षण संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन करें, उनको विश्व के समक्ष प्रस्तुत करें। पर्यावरण संरक्षण में धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का अत्यधिक योगदान है। अतः प्राचीन मान्यताओं को ऊर्जा देकर, पुनर्जीवित कर इस क्षेत्र में पर्याप्त क्रांति लाई जा सकती है। जैन धर्म ने पर्यावरण को काफी महत्व दिया है। प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने प्राचीन भारत में पर्यावरण संरक्षण और जैविक संतुलन बनाए रखने के लिए सशक्त सिद्धांतों की स्थापना की है, जो आज भी उतने ही प्रभावशील हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम जैन परंपराओं में निहित मूलभूत पर्यावरण प्रतिमानों को पुनः विश्व के समक्ष स्थापित करें। जैन धर्म हमें इस पृथ्वी के छोटे से छोटे प्राणी, वनस्पति और यहां तक कि सूक्ष्म जीवाणियों की रक्षा और सम्मान करने की प्रेरणा देता है। जैन धर्म के अनुसार समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह उपदेश दिया गया है कि वह संपूर्ण मानव जाति एवं सृष्टि के समस्त जीवों की दीर्घायु की मंगल कामना एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह प्रतिदिन करे। वह परमपिता परमात्मा की साक्षी में यह भावना भाए कि वर्षा समय पर हो, पर्याप्त हो, बाढ़ या सूखा ना हो, कोई महामारी ना फैले एवं समस्त अधिकारीगण अपने कर्तव्यों का पालन सच्चाई और ईमानदारी से करें। प्रत्येक उत्तरदायी परिवार विभिन्न निषेधों का कठोरता पूर्वक प्रतिदिन पालन करता है, जो कि पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। आप देखते होंगे कि हम प्रतिदिन यह प्रार्थना करते हैं कि हम अपने गंदे वस्त्र किसी भी प्रवाहित पानी में ना धोएं, ताकि उसमें रहने वाले सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा हो सके। कोई भी बगैर छना अशुद्ध जल ना पिए, ताकि शरीर रोग मुक्त रह सके और आसपास का वातावरण दूषित होने से बच जाए। संसार के वैज्ञानिक मानते हैं कि जैन धर्म में जो पानी छानने की प्रथा प्रचलित है और वह उनके स्वस्थ शरीर के लिए उपयोगी है। यह प्रथा श्रेष्ठ स्वास्थ्य एवं आधुनिक सभ्यता की प्रतीक है। किसी भी जल स्रोत से पानी निकालने के पश्चात शेष बचे बगैर छने पानी या जीवाने को उसी जल स्रोत तक पहुंचा दिया जाए, ताकि सूक्ष्म जीवाणु अपना प्राकृतिक जैविक संतुलन को बनाए रखकर शांतिपूर्वक जीवित रह सकें। बंधुओं, आपको यह ज्ञात कर प्रसन्नता होगी कि पर्यावरण संरक्षण में भले ही आज अमेरिका ने नेतृत्व किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में मैं उपस्थित रहा, भाग लिया और वहां देखा कि जो पर्यावरण संरक्षण का सिद्धांत, पानी छानने का जो सिद्धांत है, वह अत्यंत प्राचीन है और उसको विश्व ने मान्यता प्रदान की है। यूनाइटेड नेशंस ने मान्यता प्रदान की है और पानी छानने के विधि को संपूर्ण विश्व में प्रचारित और प्रसारित किया है। हम इस सीमा तक जाते हैं कि हम एक भी जल की बूंद व्यर्थ नष्ट ना करें, अनर्थ दंडवृत्त हमारा सिद्धांत है। पेल पौधों से व्यर्थ ही फूल या पत्ते ना तोड़ें, विद्युत या किसी भी ऊर्जा की एक यूनिट भी व्यर्थ व्यय न होने दें। आपको जानकर यह अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि वाटर कंजर्वेशन के मामले में आज संपूर्ण विश्व और संपूर्ण राष्ट्र चिंतित है और इसमें रूफ टॉप वाटर कंजर्वेशन के लिए विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी और राजस्थान में तो रूफ टॉप वाटर की प्रक्रिया वर्षों से प्रचलित है। प्रसन्नता आपको इस बात की होगी कि आचार्य विद्यासागर जी ने ऐसे पानी को कि जो रूफ टॉप से हम इकट्ठा करते हैं, नीचे उनके टंकियों में सुरक्षित रखते हैं, एक एक दो दो साल तक उनका पान करते हैं, ऐसे पानी को साधु ग्रहण कर सकते हैं और हम भगवान का अभिषेक भी ऐसे पानी से कर सकते हैं। यह अध्यात्म का वाटर प्रिजर्वेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा अवदान है और हमें इसका अत्यधिक गौरव होना चाहिए कि जैन समाज ने और विशेषतः आचार्य विद्यासागर जी ने और उनके संतों ने इस विषय में हमें लीड प्रदान की है। दिगंबर जैन साधु अपने जीवन में इको जैनिज्म के सिद्धांतों का समावेश एवं अभिव्यक्तिकरण करते हैं। आप सामने देख रहे होंगे कि हमारे साधु द्वय अपने साथ सिर्फ काष्ठ निर्मित कमंडलू और मोर पंख से बनी पिछी रखते हैं। ये दोनों उपकरण पर्यावरण संरक्षण एवं आत्मोन्नति के प्रतीक हैं। ये ऐसी सामग्री से निर्मित हैं जो स्वयमेव जीवों के द्वारा छोड़ी गई है। साधुजन कमंडलू के जल का दैनिक आवश्यकता हेतु बड़ी मितव्ययता से उपयोग करते हैं। दैनिक क्रियाओं के दौरान पिच्छी के द्वारा वे सूक्ष्म जीवों की प्राण रक्षा का प्रयास करते हैं। इस तरह मितव्ययता और प्राण रक्षा का संदेश उनके जीवन से अनायास ही प्रचारित होता रहता है। हमारे गुरुजन जैन सिद्धांतों के माध्यम से हमारी दिमागी उलझनों को सुलझा देते हैं, हमारे शारीरिक तनावों और विकारों को संयमित करके हमारी सच्ची शक्ति को जागृत कर देते हैं। वे अपनी बहुमुखी उपलब्धि के आधार पर अपने तपस्या के प्रभाव से हमारे सामाजिक स्तर पर हमें, हमारे मित्रों को बहुत बड़ा योगदान देते हैं, हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं और हमारे व्यक्तित्व को शुद्ध से शुद्धतर बनाने की दिशा में प्रयत्नशील होते हैं। मंच पर विराजित हमारे गुरुद्वय पर्यावरण की जीवंत प्रतिमा हैं। पर्यावरण के वे श्रेष्ठ संरक्षक हैं। वे हमेशा शिक्षा देते हैं कि हमें स्वच्छ पर्यावरण में रहना चाहिए, छना हुआ शुद्ध स्वास्थ्यवर्धक जल ग्रहण करना चाहिए, प्रदूषण मुक्त वायु का सेवन करना चाहिए और इस प्रकार अपेक्षाकृत अधिक से अधिक स्वस्थ रहकर हम अपने पर्यावरण को भी स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। लोगों के बगैर तनाव के प्रसन्न रहने एवं समुदाय के बीच प्रकृति में खुशहाल रहने के लिए जैन संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हमें अपने सांस्कृतिक आचार विचार का अनुसरण एवं अभ्यास प्रकृति के विकास में करना चाहिए। हम अपने विकास का ऐसा ढांचा तैयार करें जो कि पर्यावरण एवं सांस्कृतिक आधार को दृढ़ता करे। आज न केवल हमारी संस्कृति या राष्ट्र वरन हमारा संपूर्ण ग्रह और पृथ्वी भी ऐसे खतरे में है जैसे पहले कभी नहीं थी। मानव जाति पर्यावरण को इतना व्यापक पैमाने पर नष्ट कर रही है कि स्वयं प्रकृति भी अकेले इस ह्रास की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें पर्यावरण की सबसे बड़ी चुनौती को, जिससे कि हमारा और हमारी पृथ्वी का अस्तित्व जो स्वीकारना होगा, हमें स्वयं एक श्रेष्ठ पर्यावरण संरक्षक बनना होगा। बंधुओं, 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं पर अंकित जैन प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण के अर्थ एवं संदेश के वाहक हैं। ये चिन्ह संबंधित तीर्थंकर के जीवन वृत्त एवं उनकी समकालीन प्रवृत्ति पर आधारित हैं। जैन तीर्थंकरों का प्राकृतिक संपदा एवं अन्य प्राणियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। तीर्थंकर यह जानते थे कि मानव प्रकृति पर हम निर्भर हैं, अतएव उन्होंने प्रकृति, वन्य पशु एवं वनस्पति जगत के प्रतिनिधि के रूप में महत्वपूर्ण विभिन्न प्रतीक चिन्ह स्वीकार किए। 24 तीर्थंकरों के 24 चिन्हों में से प्राणी जगत से 10 चिन्ह हैं। प्राणी जगत के बैल, हाथी, घोड़ा, बंदर, हिरण एवं बकरा इत्यादि मनुष्य जगत के लिए सदैव उपयोगी एवं सहयोगी रहे हैं। चकवा पक्षी समूह का प्रतिनिधि है। जल में रहने वाले मगर, मछली, कछुआ एवं शंख का जल शुद्धि में महत्वपूर्ण योगदान है। ये जीव जगत के लिए वरदान स्वरूप रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक तीर्थंकर चिन्ह भारतीय संस्कृति में पूरी तरह से रचपच कर भारतीय जीवन पद्धति के अंग बन गए हैं। भारतवर्ष सघन वन तथा वन्य प्राणियों की प्रचुरता के लिए विख्यात रहा है। तीर्थंकरों ने चिन्हों के माध्यम से प्रकृति से अपना जीवंत संपर्क रखा है। आज आवश्यकता इस जीवंत इतिहास को विश्व के समक्ष पुनः उद्घाटित करने की है। मनुष्य की सामान्य इच्छाओं की पूर्ति प्रकृति द्वारा बिना किसी कठिनाई के तो पूरी की जा सकती है, किंतु जब इच्छा बहुगुणित होकर कलुषित हो जाती है तब उसे पूरी करना प्रकृति के लिए कठिन हो जाता है। मनुष्य की बहुगुणित इच्छा ही प्राकृतिक संकटों की जननी है। इस कलुषित एवं बहुगुणित इच्छा की तुष्टि के फलस्वरूप पर्यावरण तहस नहस हो जाता है। वायु, जल, ध्वनि एवं दृश्य प्रदूषित हो जाते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की इच्छा बहुगुणित और कलुषित होती जाती है, उसके संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। उसका मन, चित्त धवलता के स्थान पर कालिमा ग्रहण कर लेता है। आइए हम कालिमा के इस पक्ष को जैन धर्म की धवलता से धोकर पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करें। अंत में मैं एक दो सूचनाएं आपको देना चाहता हूं। जैसे कि गत 2-3 दिनों से यह संभावना बन रही है कि इन गुरुजनों का चातुर्मास जयपुर में ही होगा। यह बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। जयपुर समाज को यदि यह चातुर्मास यहां होता है तो एक बहुत बड़ी भूमिका यंग जैन अवार्ड देने की रहेगी। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि गत वर्ष शिवपुरी में हमने अपने संपूर्ण राष्ट्र से 200 ऐसे बच्चों और बच्चियों को आमंत्रित किया था जिन्होंने 12वीं की परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए थे। और आपको सुनकर यह प्रसन्नता होगी कि प्रथम स्थान जिसने प्राप्त किया था उसके अंक 93% थे। 93 और 100 में बहुत कम अंतर रह जाता है। हम ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान, जहां पूज्य गुरुजनों का चातुर्मास होगा वहां करें। और जैसे कि आप सबके भावनाओं से स्थिति बन रही है कि यह सौभाग्य शायद रत्न नगरी जयपुर को ही प्राप्त होगा। इस वर्ष जैन यंग अवार्ड में 10वीं और 12वीं के ऐसे छात्रों को संपूर्ण राष्ट्र से आमंत्रित किया गया है जिन्होंने कि 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही पीईटी और पीएमटी जो राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाती है, इन दोनों में उत्तीर्ण छात्रों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आईआईटी में जिन छात्रों का चयन हुआ है उन छात्रों को भी आमंत्रित किया जाएगा और नेशनल टैलेंट सर्च में जिनका चयन हुआ है उन छात्रों छात्राओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। अभी तक हमें जो एंट्री प्राप्त हुई है उसमें इस वर्ष 96% एक लड़की को अंक प्राप्त हुए हैं और पांडुचेरी से उसकी प्रविष्टि हमारे पास आई हुई है। तो आप कृपया ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान करने का की दिशा में पूर्ण प्रयत्न करें, पूरी रुचि लें और जो भी आपके परिवार, आपके मित्रों के परिवार, आपके पहचान वाले व्यक्तियों के परिवार में ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनके अंक 75% से अधिक हैं 10वीं में या 12वीं में, कृपया उनकी प्रविष्टियां हम तक पहुंचाएं और प्रविष्टि भेजने के लिए केवल अंक सूची की छाया प्रति, एक फोटो और उसका पता, संबंधित व्यक्ति का पता अवश्य दीजिए। एक सज्जन ने 2-3 दिन पहले यहां अंक सूची दी लेकिन उनका पता नहीं है तो हम संपर्क करने में हमें बड़ी कठिनाई होगी, इसलिए मार्कशीट की एक कॉपी, एक फोटो और एक पता अवश्य ही हम तक पहुंचाएं और हम ऐसे छात्रों को आमंत्रित करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और भारतीय संस्कृति से, जैन संस्कृति के से ऐसे बच्चों को उनके प्रारंभ काल से ही जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। आपने मुझे स्नेह दिया, सम्मान दिया, इतना समय दिया, कुछ समय अधिक हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत बहुत
धन्यवाद। हमारे इस सत्र के दूसरे प्रमुख वक्ता डॉक्टर रतन चंद जी जैन, आप भी भोपाल से हैं, आप सेवानिवृत्त रीडर हैं संस्कृत एवं प्राकृत भोपाल यूनिवर्सिटी भोपाल में। आपने जैन दर्शन में निश्चय और व्यवहार में एक अनुशीलन विषय पर पीएचडी की है और इसी विषय पर आपकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। आचार्य विद्यासागर जी के मार्गदर्शन
सागर जी के चरणों में सादर नमोस्तु, परम पूज्य मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु, माननीय सुप्रसिद्ध विद्वान प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी, प्राचार्य शीतल चंद जी, प्रोफेसर रमेश चंद जी, ठीक कह रहा हूं, और उपस्थित भाइयों और बहनों, जब स्टेशन पर उतरते ही जैसे भगवान के माता पिता के गर्भ में आते ही रत्नों की वर्षा होने लगती है, वैसे ही यदि स्टेशन पर उतरते ही सम्मान और सुविधाओं की वर्षा होने लगे तो यह समझना चाहिए कि हम पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी के सानिध्य में होने वाली गोष्ठी के क्षेत्र में पहुंच गए हैं। और फिर और आगे आने पर यदि आप उस स्थान में आ ही गए हैं तो शुभ वेशभूषाधारी युवा यदि आपकी सारी सुविधाओं में लग जाए, कहां आपका कमरा है, कहां आपको भोजन नहाना है धोना है, सारी व्यवस्था जैसे बारातियों की भी नहीं होती उससे भी अधिक होने लगे तो समझ लेना आप उस गोष्ठी में आए हैं जिसका मार्गदर्शन पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर कर रहे हैं, कई गोष्ठियों में गए हैं, अनुभव है, इसलिए कह रहा हूं। ये चापलूसी नहीं है, चापलूसी तो करता भी नहीं उन्हें। और जब उतने ही श्रोता उपस्थित हो जितने कि महाराज जी के प्रवचन में उपस्थित होते हैं, गोष्ठी विद्वत गोष्ठी में भी इतने ही श्रोता उपस्थित हो, तो समझ लेना ये पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी के सान्निध्य में होने वाली गोष्ठी है। अन्य गोष्ठियों में तो वक्ता और श्रोता एक ही होते हैं। इसी हाल में 3 साल पहले प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी संचालक थे उस गोष्ठी के, तो यहां आधे तक तो हम लोग बैठते थे, लगभग 60-70 वक्ता आए, वो शोधपत्र प्रणाम यहां तक आधे हम बैठते थे, यहां साधुगण बैठते थे। उतने में धीरे धीरे बूढ़े बूढ़े लोग आते थे, युवा तो देखने को मिलते नहीं थे, पर जहां युवा देखने को मिले समझ लेना कि वो संगोष्ठी महाराज जी के क्षमा सागर जी के सान्निध्य में आयोजित की गई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास समय बहुत है, 30 मिनट है, आप डरना नहीं और मैं भी नहीं डर रहा हूं। इतना समय किसी भी गोष्ठी में नहीं मिला, इस भव में मैं तरस गया हूं, इस मानव भव में मैं तरस गया हूं, संगोष्ठियों में जाते जाते और कहीं 5 मिनट कहीं 7 मिनट और घंटी बज जाती है और एक यमराज के समान यमदूत के समान वो संचार लगा के खड़ा हो जाता है और सूचना दे देता है कि वक्त खत्म हो गया, थोड़ा ऐसे कांपने लगते हैं हम, हृदय की धड़कने बढ़ जाती है। लेकिन महाराज जी की संगोष्ठी के सान्निध्य में हम बीना में थे, आध घंटा मिला ऐसा हमने आराम से खूब छक करके समय का भोजन किया। मैंने यहां भी है, देख लेता हूं, 8:45 शुरू किया है मैंने। जहां आपको इस प्रकार का यूनिफॉर्म दिया जाए और सच्चे अर्थों में आपको विद्वान बाह्य रूप से भी विद्वान दिखने लगे, समझ लेना कि वो गोष्ठी क्षमा सागर जी के सान्निध्य में हो रही है। ये जो हम लोगों का विद्वानों का द्रव्य लिंग है, जैसे मुनियों का द्रव्य लिंग होता है नग्न भेषभूषा कमंडल और पिच्छी आदि, वैसे ही हमारा ये द्रव्य लिंग है। इस द्रव्य लिंग की शुरुआत किसने की है? महाराज जी ने, और कहीं किसी ने नहीं की। ये इसलिए आवश्यक है कि हमारे बीना में हम देख रहे थे कि एक भीड़ में चले आ रहे थे बहुत से लोग, तो बहुत से बूढ़ी स्त्रियां पुरुष भी थे सब, और वो वॉलंटियर्स जो हैं वो आने नहीं दे रहे थे उनको। लेकिन जब मेरा ये द्रव्यलिंग देखा, उन्होंने जैकेट देखी, फौरन नमस्त सिर झुका करके और प्रवेश करने दिया। इसका ये महत्व है, मैं समझा बहुत दिनों बाद, ये विशेषता सिर्फ क्षमा सागर जी की संगोष्ठी में ही मिलती है। जहां संचालक उछल कूद ना करता हो, अपनी नाजायज टिप्पणियों से समय बर्बाद ना करता हो, जहां ऐसे उद्घोषक हों जो संक्षिप्त सारभूत और मधुर वाणी में जो उतनी ही चीज बताना है जितनी की जरूरी है, समझ लेना वो संगोष्ठी क्षमा सागर जी महाराज के सान्निध्य में। मैं तो कहता हूं कि ये एक मुनि भी इतनी व्यवस्था, इतनी सुचारू और सुंदर व्यवस्था कर सकते हैं मुनि महाराज, मैं तो नहीं विश्वास करता था, करना पड़ा बीना से देख करके। ये वो महाराज हैं, पहले मैं अपने समाचार पढ़ने के लिए, छोटा सा है मेरा लेख, मैंने देखा कि बाणभट्ट ने लिखा है कादंबरी में कि यदि किसी के पास धन हो तो उतना ही बुलाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन उसके ऊपर यौवन हो तो फिर कहना बिगड़ने की सामग्री तो बहुत अधिक कई गुनी हो गई है, और यदि उसके साथ ही सत्ता हो, राजसत्ता हो, धन हो, यौवन हो, राजसत्ता, तब तो समझ लेना कि फिर उसके सुधर उसके कहीं कोई सन्मार्ग पर रहने के कोई चांसेस नहीं है। ये तीनों चीजें इनके पास थी, बल्कि और भी ज्यादा थी। ये करोड़पति घराने के बेटे हैं, क्या थी? कोई भी भोग विलास की सामग्री के उपभोग की सुविधाएं जितनी इनके पास थी, उनके पास बिगड़ने लायक तो बहुत थी। और ये सागर जैसे शहर में रहते थे, पुराना शहर है, वहां सारी भोग विलास की वस्तुएं दुकानों में मिलती हैं, और ये यूनिवर्सिटी में जहां आधुनिक शिक्षा दी जाती है, जहां कोई भी धार्मिक शिक्षा का नामो निशान नहीं है, ऐसी शिक्षा पढ़े और ओबीएम टेक भूगर्भ शास्त्र में, वहां तो कुछ भी धर्म की ओर जाने की कोई चांसेस नहीं थे, सब कुछ बिगड़ने के ही उन्मार्ग की ओर ही जाने के चांसेस थे, लेकिन इतनी कम उम्र में एक विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करते ही पता नहीं क्या हुआ कि इन तीनों चीजों ने मिलकर भी उनको किसी भी कुमार पर ले जाने की हिम्मत नहीं हुई। धन की, यौवन की और आधुनिक शिक्षा की, सागर जैसे शहर की, किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये बहुत दुनिया का पहला आश्चर्य है। ये ऐसे ये मुनिराज हैं, इनकी संगोष्ठियों में आप देखोगे, मैंने एक दिन इतनी पंक्चुअलिटी यानी आत्मानुशासन, समयानुशासन, वचनानुशासन और आचरणानुशासन, ये चार प्रकार के अनुशासन रहते। समय का अनुशासन तीव्र है। मैंने बीना में कहा था, महाराज जी आपका समय का अनुशासन तब समझेंगे जब कोई मंत्री आ जाए और तब आप समय पर काम करवा लो, तो जाने। महाराज जी ने कहा था हम मंत्री को बुलाते ही नहीं। मैंने कहा तो इसलिए यही रास्ते है आपका और आपका सिर्फ, क्या बात है। हर चीज में सौंदर्य, वाक सौंदर्य, भाव सौंदर्य, वस्तु सौंदर्य, प्रस्तुति सौंदर्य, सारे के सारे सौंदर्य इनके कार्यक्रम में समाविष्ट हो जाते हैं। मैं महाराज जी के बारे में एक बात कहूंगा, पता नहीं फिर बाद में मौका मिल पाए कि नहीं मिल पाए। ये वो महाराज हैं जिनके वचनों की इतनी ज्यादा विश्वसनीयता मैंने अनुभव की है कि भोपाल में जो एक अलग पंथ के हैं, एकांत निश्चयवादी हैं, वो भी इनके प्रवचन में सुनने के लिए आते थे और आपके पास प्रश्न करते थे। और एक महिला जब हमारी क्लास में बैठी थी, बूढ़ी महिला थी, वो कहते हैं किसी समस्या खड़ी हो गई, कोई प्रश्न खड़ा हो गया, तो मैंने उसको समाधान किया, बोले हम नहीं मानते। तो मैंने कहा फिर मैं महाराज जी से पूछ के आऊंगा। बोले कौन से महाराज जी से? मैंने कहा किसी भी महाराज जी से, किसी भी मुनि से पूछ लूंगा, आप बता देंगे। बोले नहीं, अगर क्षमा सागर जी कहेंगे तो ही मानूंगी मैं। आश्चर्यचकित रहेगा, वो एक एकांत निश्चयवादी महिला थी। अभी अभी एक 15 दिन पहले की बात है, वो महिला फिर अभी एक मुनि संघ दूसरा आया हुआ, उनके पास भी वो आती है, प्रश्न करती है, कुछ समाधान भी हुआ, लेकिन वो हमसे कहती है क्या करें, लोग हमको तो पहले से ही अमुक पंथी समझ करके हमसे बात ही नहीं करते हैं और कुदृष्टि से देखते हैं। लेकिन सिर्फ क्षमा सागर जी महाराज के पास मैं गई हूं और वहां पर मुझे अनुभव हुआ है कि मैं एक मुनि के पास आई हूं और मैं एक श्राविका हूं, ऐसा अनुभव हुआ है और उनके पास प्रश्नों का समाधान हुआ है। जब वो महिला ऐसी गई तो मैंने कहा ये तो बात क्या है, ये मुनि को हम कहें क्या, इनको हम इनको क्या कहें, ये आगम पंथी मुनि, महावीर पंथी मुनि जो सबको अपने में समाए हुए हैं, एक ऐसे समन्वयवादी मुनि है, कहीं किसी को आहत नहीं होता किसी का हृदय इनके पास आकर के। जहां विद्वानों को ऐसा लगने लगे कि अरे मैं विद्वान हूं, जहां विद्वानों को ऐसा लगने लगे कि मैं विद्वान हूं, समझ लेना वो हम कहां पर आए हैं, क्षमा सागर। जहां विद्वानों को ऐसा लगे अरे हम तो बाजे बजाने वालों से भी गर्वित थे, बाजे बजाने वाले आते हैं ना वो प्रतिष्ठाचारियों के साथ, उनसे भी यदि हम गर्वित हैं तो समझ लेना वो किसी दूसरे की संगोष्ठी सानिध्य में हो रही है। ऐसा है, सौगानी जी कहते थे कि पंडितों को देख लो, ये विद्वान लोग आते हैं तो मालूम ये विद्वान अपनी विद्वत्त, ये सौगानी जी हैं, ये कमल सौगानी जी कह रहे थे कि ये विद्वान लोग आते हैं, विद्वान बने फिरते हैं, प्रोफेसर बने रहते हैं और इनको एक हाल में और नीचे तकिए डाल दो और एक दरी डाल दो और बस वहीं पर पूरे बरातियों जैसे, गाय भैंसों जैसे पड़े रहते हैं, इनको अपनी विद्वत्ता की भी कदर नहीं है। बात तो सही कही थी, लेकिन यहां आकर के हमने देखा, चाहे बीना हो, चाहे मैंने दो ही देखी, इंदौर की मैंने सुनी और झांसी की भी सुनी है, वही प्रशंसा, यहां आकर के ऐसा कमरा मुझको मिला है, बहुत अच्छा कमरा, आप उसको क्या कहेंगे, दूसरे लोगों के दिल से नहीं छूटता कि इन विद्वानों को भी दें, विद्वान इसके लायक भी नहीं क्या, पर उन्होंने हमें ऐसा अनुभव कराया है कि हम सचमुच में विद्वान है। ये बातें हुई, ऐसे महाराज का मैं परम भक्त हूं, नमोस्तु महाराज जी। और आप लोग और हम, ये तो मुझे ऐसा लगा कि हम नहीं आ पा रहे थे, बड़ा कष्ट था उस, ये निशा बेटी ने पता नहीं क्या ऐसी व्यवस्था की, और जैसे कोई आदमी को उठा करके दे, वो कौन लोग ले जाते हैं और भोग भूमि में पटक दिया जाए, किसी को जबरदस्ती उठा के पटक देना, कि वो तपस्वियों को वही समुद्र में पटक देते हैं, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे इन लोगों ने जबरदस्ती भोग भूमि में ला करके पटक दिया हो ऐसा। मेरा विषय है बहुत जरा आप लोग थोड़ा गंभीरता से विचार करें, इसमें आधुनिक मनोविज्ञान की बातें हैं। जैन आचार में इंद्रिय दमन का मनोविज्ञान, जैन सिद्धांत में वीतरागता को मोक्ष का एकमात्र साधन माना गया है। वीतरागता का लक्षण है समस्त शुभाशुभ इच्छाओं की निवृत्ति, अतः मुक्ति की सारी साधना इच्छाओं के विसर्जन की साधना है। निराकुलता रूप सच्चे सुख की प्राप्ति भी इच्छाओं के अभाव से होती है। इच्छाएं जितनी कम होंगी निराकुलता का अनुभव उतना ही अधिक होगा। जब इच्छाएं पूर्णतः समाप्त हो जाती हैं तब पूर्ण निराकुलता का आविर्भाव होता है। जैन आचार शास्त्र में इच्छाओं से मुक्ति के दो उपाय बतलाए गए हैं, विषयों से वैराग्य और इंद्रिय दमन। इंद्रिय दमन का अर्थ है इंद्रियों को बलपूर्वक विषय भोग से दूर रखना। इसे इंद्रिय निग्रह और इंद्रिय संयम भी कहते हैं। मनीषियों ने कहा है, कार्तिकेय अनुपरीक्षा में कहा है, जो पुण्य विषय विरक्तो अपारम सव्यदो विसंवरई मनहर विषये हिंतो तस्य फुडम समरो होदी। और छेडाला में कहा है, सम दम ते जो कर्म न आवे सो संवर आदरिये। सम का मतलब है राग का अभाव और दम का मतलब है इंद्रिय दमन। ये सम और दम दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। दमन की आलोचना की है, किंतु आधुनिक युग के प्रसिद्ध मनोविश्लेषक फ्रायड ने दमन की कटु आलोचना की है। उसने इसे सभ्य समाज का सबसे बड़ा अभिशाप बतलाया है और कहा है कि सभ्य संसार की जितनी भी मानसिक और शारीरिक बीमारियां हैं, जितनी हत्याएं और आत्महत्याएं होती हैं, जितने लोग पागल होते हैं, जितने पाखंडी बनते हैं, उनमें अधिकांश का कारण इच्छाओं का दमन है, ऐसा कहा है उसने। इच्छाओं के दमन से व्यक्तित्व अंतर द्वंद से ग्रस्त हो जाता है, प्राकृतिक मन और नैतिक मन में संघर्ष छिड़ जाता है। प्राकृतिक मन भोग की इच्छा उत्पन्न करता है, नैतिक मन उसे दबाने का प्रयत्न करता है। इस संघर्ष में इच्छाएं दब जाती हैं पर नष्ट नहीं होती, वे गूढ़ मन की गहराइयों में, जैसे वो कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड कहता है फ्रायड, वे गूढ़ मन की गहराइयों में चली जाती हैं और ग्रंथि बनकर बैठ जाती हैं। ये ग्रंथियां चारित्र में विकृति उत्पन्न करती हैं, मनुष्य को रुग्ण विक्षिप्त छद्मी या भ्रष्ट बना देती हैं। इच्छाओं के दमन का परिणाम हर हालत में विनाशकारी है, उसका कथन है। इसलिए फ्रायड ने दमन का पूरी तरह निषेध किया है और उन्मुक्त काम भोग की सलाह दी है। यद्यपि उसके द्वारा सुझाई गई यह दवा रोग से भी भयंकर है। गीता में भी कहा गया है कि जो मूढ़ात्मा इंद्रियों को बलपूर्वक विषय भोग से वंचित रखता है वह मन ही मन विषयों का स्मरण करता रहता है, इस प्रकार वह मायाचारी बन जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसास्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सउच्यते। जैनाचारी वट्टकेर ने भी मूलाचार में बतलाया है कि जिसका विषयों से राग समाप्त हो गया है वही वास्तव में संयमी है। जो बलपूर्वक इंद्रियों को विषयों से दूर रखता है वह संयमी नहीं है। मूलाचार में भी जैन ग्रंथ आचार ग्रंथ मूलाचार में भी कहा, क्योंकि उसका मनरूपी हाथी विषयों में रमण करता रहता है इसलिए उसे सुगति प्राप्त नहीं होती। उनकी गाथा इस प्रकार है, भाव विरुदो दु विरुदो न दव्यवरदस्य सुगई होई विषय वण रमण सीलो धरियब्बो तेण मण हत्थी। पंडित टोरामल जी ने भी क्षमता के अभाव में जो बलपूर्वक उपवास आदि किया जाता है उसके पांच दुष्परिणाम बतलाए हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। बलपूर्वक उपवास आदि जो किया जाता है, पहला दुष्परिणाम तो यह होता है क्षुधादि की पीड़ा असह्य होने पर आर्त ध्यान उत्पन्न होता है। दूसरा, मनुष्य प्रकारांतर से इच्छा तृप्ति की चेष्टा करता है, जैसे प्यास लगने पर पानी तो ना पिए किंतु शरीर पर जल की बूंदें छिड़कने लगे। तीसरा, पीड़ा को भुलाने के लिए जुआ आदि व्यसनों में चित्त लगाता है। जब उपवास की पीड़ा सही नहीं जाती, भूख की इच्छा होने लगती है, तो मन को बहलाने के लिए जुआ हुआ भी खेलने लगता है। चौथा, प्रतिज्ञा से चित्त हो जाता है, अब नहीं सही जाए तो भोजन कर लो। पांचवा, उपवास आदि की प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर भोजन में अति आसक्ति पूर्वक प्रवृत्त होता है। यहां प्रश्न उठता है कि यदि इंद्रिय दमन इतना हानिकारक है तो जैन आचार संहिता में उसे आवश्यक क्यों बतलाया गया है? और जब विषयों से वैराग्य होने पर इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तब इंद्रिय दमन का औचित्य क्या है? अथवा यदि इच्छाओं का विसर्जन केवल विषयराग से संभव नहीं है, इसके लिए इंद्रिय दमन भी आवश्यक है, तो इच्छाओं के विसर्जन में उसकी मनोवैज्ञानिक भूमिका क्या है? इसी की गवेषणा इस आलेख में की गई है। इंद्रिय दमन की मनोवैज्ञानिकता पर प्रकाश डाला जा रहा है। सामान्य धारणा यह है कि इंद्रियों की विषय प्रवृत्ति सर्वथा मनोगत विषय वासना पर आश्रित है। यह सामान्य धारणा है। मन की विषयाशक्ति के कारण ही इच्छाएं पैदा होती हैं और इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं। इसलिए मन के विषय विरक्त हो जाने पर इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, अतः इंद्रियों पर अलग से निग्रह आवश्यक नहीं है। इच्छाओं के दो स्रोत पर यह धारणा तथ्य के विपरीत है। यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो पाएंगे कि इच्छाओं से मुक्ति के लिए विषयों से विरक्ति ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इच्छाएं केवल विषयाशक्ति से ही उत्पन्न नहीं होती, इंद्रियों के व्यसन या भोगाभ्यास से भी उत्पन्न होती हैं। यह एक शुद्ध शारीरिक या स्नायु तंत्रीय प्रक्रिया है। मूल रूप से इच्छाएं विषय राग से ही उत्पन्न होती हैं, किंतु तृप्ति के लिए जब इंद्रियां विषय भोग करती हैं तब नाड़ी तंत्र में भोग का एक संस्कार पड़ता है। वह संस्कार जब बार बार आवृत्त होता है तब वह एक व्यसन या लत में परिणत हो जाता है। तब इंद्रियों में संबंधित विषय के भोग की इच्छा अपने आप उत्पन्न होने लगती है। जिस समय जिस वस्तु के भोग का अभ्यास इंद्रियों को हो गया है, उस समय उस वस्तु की प्राप्ति के लिए ऐन्द्रियक नाड़ी तंत्र में उद्दीपन होता है। इससे शरीर और मन में व्याकुलता की अनुभूति होती है, जिससे मुक्त होने के लिए उस वस्तु का भोग आवश्यक हो जाता है। इस उद्दीपन को तलब कहते हैं, लोक भाषा में इसको तलब कहते हैं। उदाहरण के लिए, जिन्हें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चाय, शराब आदि की लत पड़ जाती है, उनके ऐन्द्रियक तंतुओं में निर्धारित समय पर इन द्रव्यों के भोग की उत्तेजना पैदा होती है और तब उन्हें बरबस इनका सेवन करना पड़ता है। हमने टीवी में देखा है, कभी वो ड्रग्स लेते हैं, जब वो ड्रग्स जहीं मिलती उनको तो बहुत तड़पते हैं। इसी प्रकार जिन्हें अधिक भोजन करने की या अधिक काम सेवन की आदत पड़ जाती है, उनकी इंद्रियां उतने ही भोजन और उतने ही काम सेवन की मांग करने लगती हैं। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में कंडीशनिंग अर्थात प्रतिबद्धीकरण कहते हैं। इंद्रियों का एक अलग विधान, मन अलग काम करता है और इंद्रियां जड़ होते हुए भी अलग काम करती हैं। भोगाभ्यास हो जाने पर इंद्रियों का अपना एक अलग विधान बन जाता है। पहले वे मन के अनुसार चलती हैं, इंद्रियां पहले मन के अनुसार चलती हैं, बाद में मन को अपने अनुसार चलाने लगती हैं। इस बात ध्यान देने की बात है कि मन के अनुसार ही इंद्रियां चलती हों, यह सर्वथा सत्य नहीं है। इंद्रियां भी अपने अनुसार मन को चलाने लगती हैं जब इंद्रियों में व्यसन का अभ्यास हो जाता है तब, और उनकी चालक शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि ना चाहते हुए भी वे मन नहीं चाहता है तो भी मन को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लेती हैं। यह तथ्य तो सर्वविदित है कि मन ही हमारे समस्त कार्यों का स्रोत है, मन ही इंद्रियों को अपने अपने विषयों में प्रवृत्त करता है। पर इस तथ्य पर शायद सबका ध्यान ना गया हो कि इंद्रियां भी मन को बलात् अपने विषयों की ओर आकृष्ट कर लेती हैं। गीता में
यह तथ्य स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया गया है। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, समझदार मनुष्य भी इन इंद्रियों को बस में करने का बार बार प्रयत्न करे तो भी ये प्रचंड इंद्रियां मन को जबरदस्ती विषयों की ओर खींच ले जाती हैं। ये गीता का कथन है, लेकिन जैन शास्त्रों में भी बिल्कुल यही बात कही गई है। पंडित आशाधर जी ने भी अनगार धर्मामृत में इस मनोवैज्ञानिक सत्य को अनावृत किया है। इष्ट मिष्टोत्कट रसई राहारई रुद्भटी कृता यथेष्ट मिंद्रिय भटा भ्रमयंति बहिर मना। अर्थात यदि इंद्रियों को इष्ट मिष्ट और स्वादिष्ट भोजन से अत्यंत शक्तिशाली बना दिया जाता है तो वे मन को बाह्य पदार्थों में भ्रमण कराती है। आशाधर जी का है, यानी गीता का और हमारे जैन शास्त्रों का जो मनोवैज्ञानिक तथ्य है उन पर दोनों एक ही बिंदु पर है, एक सहमत है। यही कारण है कि कई बार लोग बीड़ी सिगरेट शराब आदि की हानियों से सचेत होकर जब उन्हें छोड़ने का प्रयत्न करते हैं तो बार बार कोशिश करने पर भी नहीं छोड़ पाते। इसीलिए जहां यह सत्य है कि इंद्रियों के विषय निवृत्त हो जाने पर भी मन का विषय विरक्त होना अनिवार्य नहीं है, वहां यह भी सत्य है कि मन के विषय विरक्त हो जाने पर भी इंद्रियों का विषय निवृत्त होना निश्चित नहीं है। यद्यपि यह सुनने में कुछ विचित्र लगेगा, क्योंकि हमारे मन में यही धारणा है कि मन ही इंद्रियों की विषय प्रवृत्ति का एकमात्र हेतु है और उसके विरक्त हो जाने पर इंद्रियों का भी विषय निवृत्त हो जाना अनिवार्य है, पर अनुभव ऐसा नहीं कहता। मन के विषय विरक्त हो जाने पर भी इंद्रियों के अभ्यास बस विषयेच्छा उत्पन्न होती रह सकती है, जैसे कि चाय आदि की आदत पड़ जाने पर उनसे विरक्ति होने के बावजूद उनके भोग की इच्छा उत्पन्न होती रहती है। इस तथ्य को देखते हुए गीता का यह कथन बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है कि काम का निवास, काम माने इच्छा का निवास, मन बुद्धि और इंद्रिय तीनों में रहता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते ए तरी विमोहयत्येष ज्ञान मावृत्त देहि नाम। यह श्लोक वसन निवृत्ति अभ्यास से, इस प्रकार इच्छाओं के दो स्रोत हैं विषय राग तथा इंद्रिय विषन। विषय राग तो ज्ञान से नष्ट हो जाता है, विषय राग तो सम्यक दर्शन होने पर वही वैराग हो जाता, संसार शरीर और भोगों से राग हट जाता, वो सम्यक दर्शन का लक्षण है। लेकिन वो तो चौथे गुणास में अभी आ गए, वो पांचवें में श्रावक पूरे व्रत नहीं ले पाता। विषय राग तो ज्ञान से नष्ट हो जाता है, इंद्रिय विषन की निवृत्ति कैसे हो? इंद्रियां तो जड़ हैं, उनकी व्यवस्था पूर्णतः भौतिक या स्नायविक है, उनकी अभ्यास जन्य अभी नहीं हुआ, अभी तो 10 मिनट और हैं, आध घंटा कहा गया था मुझसे, मैंने तो महाराज जी तो 40 मिनट कह रहे थे, मैंने कहा नहीं आध घंटा पर्याप्त है, हमने 8:45 से शुरू किया था, 9:15 पर आध घंटा पूरा होता है। इस प्रकार इच्छाओं के दो स्रोत, तो इतनी बात तो सुनी लो नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। इस प्रकार इच्छाओं के दो स्रोत हैं विषय राग तथा इंद्रिय विषन, अब हमने पहले से पढ़ दिया इसमें समय और चला गया। उनकी व्यवस्था पूर्णतः भौतिक या स्नायविक है, उनकी अभ्यास जन्य स्नायविक व्यवस्था को ज्ञान से कैसे बदला जा सकता है? नाड़ी तंत्र आध्यात्मिक सत्य और दार्शनिक तर्कों को कैसे समझे? तर्कों को चेतन तत्व ही समझ सकता है, जो विकार अज्ञान जन्य हो उसे ही ज्ञान से नष्ट किया जा सकता है, किंतु जो विकार अभ्यास जन्य हो उसे ज्ञान से समाप्त करना कैसे संभव है? यदि मन की कोई धारणा गलत हो तो उसे केवल समझ से बदला जा सकता है, लेकिन यदि तन की कोई आदत गलत हो तो उसे केवल समझ से नहीं बदला जा सकता। जिन्हें बीड़ी सिगरेट शराब आदि की लत पड़ गई है उनके नाड़ी तंत्र में उत्पन्न होने वाले तलब क्या इन पदार्थों को हानिकारक समझ लेने मात्र से मिट सकती है? नहीं, समझ उत्पन्न होने के बाद जब इस तलब के अवदमन का अभ्यास किया जाएगा तभी मिट सकती है। अर्थात जब जब इन मादक द्रव्यों की इच्छा उत्पन्न हो तब तब उस इच्छा को पूर्ण न करने का प्रयास किया जाए, तभी नाड़ी तंत्र में विकसित तलब के संस्कार धीरे धीरे शिथिल होकर नष्ट हो सकते हैं। इसके लिए कोई प्रतिपक्षी उपाय भी अपनाया जा सकता है, जैसे बीड़ी तंबाकू आदि की तलब उत्पन्न होने पर किसी हानिकारक वस्तु का सेवन किया जाए या चित्त को किसी रुचिकर कार्य में व्यस्त कर दिया जाए, पर व्यसन जन इच्छा को किसी भी दशा में संतुष्ट ना किया जाए। इस कार्य में आरंभ में कष्ट तो बहुत होगा, लेकिन हम पाएंगे कि धीरे धीरे इंद्रियों की व्यसन जन्य उत्तेजना तृप्ति की सामग्री न मिलने से क्षीण होती जा रही है और नाड़ी तंत्र की विकृत अवस्था में बदलाव आ रहा है। इस प्रकार वह व्यसन एक दिन पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। समस्त इंद्रिय विषयों के अनावश्यक भोग की आदतें इसी प्रकार मिटाई जा सकती हैं और इसी प्रकार इंद्रियों को अनावश्यक विषय भोग के व्यसन से बचाया जा सकता है। इसे ही जैन आचार में दमन, अभी ताली मत बजाना, मैं खुद ही बंद कर रहा हूं, इसे ही जैन आचार में दमिया इंद्रिय दमन कहा गया है और इसी कारण इंद्रिय दमन की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। मैंने अपना शेष छोड़ दिया है, क्योंकि ये चिट आ गई थी तो डर लगने लगा, तो मैंने कहा कि अब इसको थोड़ा कम ही कर दो। और महाराज जी की संगोष्ठी में ताली, शायद हमने भ्रम से कह दिया कि ताली मत बजाने, यहां ताली है,
तरफ से नहीं आया।
अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो फिर जलाशय महाराज जी।
हाँ, आराम से करिए, पूरे मन से आप बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं 3 बजे रात।
ये कहो कि हार्ट थोड़ा बलवान है हमारा, नहीं तो इन चिटियों को इतना भोगा है हमने, और कभी पीछे हमारा कुर्ते ही पकड़ के खींच देते तो कुर्ते ही फट जाता है, इससे डर लगता है। हार्ट जरा मजबूत है, हार्ट कमजोर होता तो हार्ट ही फेल हो जाता है यहां पर इन चीटों को देख करके। इंद्रिय दमन अपरिहार्य है, फ्रायड की बात नहीं मानना, इंद्रिय दमन अपरिहार्य है। फ्रायड के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रचार होने के बाद दमन शब्द खतरनाक मालूम होने लगा है, पर इच्छाओं के विसर्जन में इसकी मनोवैज्ञानिकता सिद्ध है। रागजन्य इच्छाओं को ज्ञानजन्य वैराग्य से विसर्जित किया जा सकता है, किंतु व्यसनजन्य और गृद्धिजन्य या इंद्रिय लोभजन्य तथा अन्य दैहिक उत्तेजना जन्य अनावश्यक इच्छाओं से मुक्ति पाने के लिए इंद्रिय दमन अपरिहार्य है। हानिकारक नहीं, इंद्रिय दमन हानिकारक नहीं जो फ्रायड कहता है। इंद्रिय दमन अर्थात शरीर में उत्पन्न होने वाली अस्वाभाविक एवं अनावश्यक उत्तेजनाओं को नियंत्रित करना हानिकारक नहीं है, बल्कि स्वास्थ्यप्रद एवं शांतिप्रद है। अस्वाभाविक एवं अनावश्यक इच्छाएं एक दैहिक विकृति है, विषय भोग द्वारा विकृति का पोषण अस्वाभाविक इच्छाओं की उत्पत्ति द्वारा आर्तभाव को जन्म देता है और आर्तभाव अनेक मनोरोगों और शारीरिक व्याधियों को प्रतिफलित करता है। अतः अस्वाभाविक एवं अनावश्यक उत्तेजनाओं को निष्क्रिय कर देने से आर्तभाव की उत्पत्ति का महान कारण निरस्त हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य और शांति की उपलब्धि होती है। उत्तेजनाओं का नियंत्रण क्रमशः, हां, इंद्रिय उत्तेजनाओं का नियंत्रण क्रमशः किया जाना चाहिए। जितने अंश में राग भाव विगलित होने पर चारित्रिक क्षमता उत्पन्न हुई है, उतने ही अंश में इंद्रिय उत्तेजनाओं का दमन करना युक्त है। ऐसा होने पर चारित्रिक विकृति के लिए अवकाश न होगा। उन्मुक्त भोग दमन का विकल्प नहीं, वैराग्य विहीन अथवा क्षमता विहीन इंद्रिय दमन से चारित्रिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं। उनसे बचने के लिए फ्रायड ने जो उन्मुक्त भोग का उपाय बतलाया है, वह भारतीय आचार संहिता में अंगीकृत नहीं किया गया, क्योंकि यह तो उस औषधि के समान है जो रोगी को एक साधारण रोग से बचाने के लिए उससे भी भयंकर रोग से ग्रस्त कर देती है। इच्छाओं का वैराग्य विहीन दमन जितना हानिकारक है, उससे भी कहीं ज्यादा घातक उन्मुक्त भोग है। इसके लोम हर्षक परिणाम हम अमेरिका जैसे स्वच्छंद भोगी देशों में दिनों दिन बढ़ती हुई विक्षिप्तता और आत्महत्याओं के रूप में देख सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि इंद्रिय उत्तेजनाओं के शक्ति अनुसार क्रमिक दमन से इच्छाओं का नाड़ी तंत्रीय या स्नायविक स्रोत निष्क्रिय हो जाता है। अतः इच्छाओं के विसर्जन में इंद्रिय दमन उतना ही मनोवैज्ञानिक साधन है जितना विषयों से वैराग्य। मेरा आलेख पूर्ण हो गया। महाराज जी के संगोष्ठी में, महाराज जी के निर्देशन में जो संगोष्ठी होती है, उसमें कोई भी वक्ता घबराता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि महाराज जी समय कम वक्ता बोला तो 30 मिनट का समय निश्चित कर देते हैं, तो वो अपने ध्यान में रखते हुए अपने आप और इज्जत से 30 मिनट में समाप्त करके बैठ जाना चाहिए। ये चिट जो है महाराज जी के की इच्छा के अनुसार नहीं है, ये अना पता नहीं कैसे भेज दी गई, मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद।
देवियों और सज्जनों, अभी अभी डॉक्टर रतन चंद जी जो भोपाल से पधारे, उन्होंने बहुत विनोद में बहुत सारी बातें कह दी, लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी ऐसी मान्यता रही है, मेरा अपना जीवन भी पहले शिक्षक के रूप में शुरू हुआ था, और हम ये आप सब लोग जानते हैं कि एक शिक्षक को जब तक 40 मिनट 45 मिनट का समय नहीं मिले तृप्ति नहीं हो पाती। अगली संगोष्ठी जब हम महाराज के सानिध्य में करेंगे तो हर वक्ता के लिए कम से कम 1 घंटे का समय जरूर रखेंगे। ये बात जो चिट आपके पास आई थी वो समय सीमा जो पहले निर्धारित कर दी गई थी उसके अनुरूप थी, उसमें आचार्य श्री की तरफ से कोई या मुनि श्री की तरफ से कोई चिट हमारे पास नहीं आया करती। संगोष्ठी हम लोग आयोजित कर रहे हैं मुनि श्री के सानिध्य में कर रहे हैं। देवियों सज्जनों,